ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी अभी हम सब ने गीत के बोल सुने, क्या सुने? कर भला, सोचो भी भला, करो भी भला, होगा भी भला। तो आप सबकी यही इच्छा रहती है ना, हमारा भी भला हो, हमारे संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं का हमसे भला हो, है ना? तो उसके लिए क्या करना होगा? तो आज का टॉपिक आप सबने सुन लिया, श्रेष्ठ वृत्ति से पावरफुल वायुमंडल बनता है, ये तो हम सब जानते हैं कि परिवर्तन की वेला है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। वर्तमान समय विश्व का जो परिवर्तक है, जिनको हम बड़े प्यार से सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है। तो उस कल्याणकारी पिता को हो, बाप दादा को हो, उन सब के अंदर, उनके अंदर एक हम बच्चों के लिए शुभ संकल्प है, क्योंकि शुभ संकल्पों से ही, शुभ स्थिति से ही, शुभ विचारधारा से ही वृत्तियां बनती हैं और हमारा भी कल्याण होता है, समस्त विश्व का कल्याण होता है। तो प्राण बाप दादा का यही शुभ संकल्प है कि मेरे बच्चे ज्ञान मुहूर्त, गुण मुहूर्त, दुआओं का मुहूर्त, तपस्वी मुहूर्त बनकर समस्त विश्व के अंदर कल्याणमयी भाव बनाए, सद्भाव सद्भावनाएं जागृत करें। जब हम कहते हैं कि परिवर्तन की वेला है, तो परिवर्तन एक परमात्म शक्ति के द्वारा होगा, या परमात्म शक्ति ने जिन बच्चों को अपना बनाया है उन बच्चों की सर्वश्रेष्ठ स्थिति से, क्योंकि हम सब के अंदर समस्त विश्व के लिए कल्याण कल्याण तभी निकलेगा जब पहले हमने अपने लिए शुभ, शुद्ध और शुभ में विचरण करते रहेंगे। आप देखेंगे प्राण बाप दादा, हम सदा ही शुभ बोले, शुभ सोचे, उसके लिए रोज रोज हम सब बच्चों को ज्ञान की दिव्य धारणाओं, दिव्य राजों से और दिव्य गुणों से हमारा श्रृंगार करते रहते हैं, हम सब बच्चों को सींते रहते हैं, ताकि मेरे बच्चे सशक्त बन करके समस्त विश्व के अंदर कल्याणकारी भावनाएं जागृत करें। परंतु जागरण वो ही ला सकता है जो सदा जागती ज्योत होगा। हम सब बच्चों के अंदर बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र देखा, आदि अनादि स्मृतियों को, सत्य स्मृतियों को जागृत किया, और सदा ही हमें इस बात का संकेत देते रहते हैं कि बच्चे अपने आप को ये समझो कि मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं जागती ज्योत हूं, मैं पवित्रता का सूरज हूं, मैं इष्ट हूं, मैं पूज्य हूं। तो ये स्मृतियां बाबा हम बच्चों में क्यों जागृत करते हैं? ताकि हमारे संकल्प हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार, हमारे कर्म का शुद्धिकरण हो जाए। क्योंकि जब तक हमारे मन, हमारे संकल्पों का, हमारे संस्कारों का, हमारे कर्मों का शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक हम संसार के अंदर सद्भाव और सद्भावनाओं को जागृत नहीं कर सकते हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि अंतर मन में अनेक प्रकार के विचार हम सब के अंदर पैदा होते हैं, शुद्ध संकल्प भी पैदा होते हैं, नेगेटिव संकल्प भी पैदा होते हैं, और जिन संकल्पों का कोई प्रयोजन नहीं है वो संकल्प भी पैदा होते हैं, और अच्छे पावरफुल संकल्प भी पैदा होते हैं। तो ये चारों प्रकार के संकल्प सबके अंदर पैदा होते हैं, क्योंकि जन्म जमानता से लेकर हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करते रहे हैं। अनेक आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब रहा है, जिसके कारण ये संकल्पों का आना संभाविक है। परंतु जो संकल्प हमारे अंदर ज्यादा चलेंगे, उन्हीं संकल्पों के कारण हमारे विचार बनते जाएंगे, हमारे कर्म बनते जाएंगे, हमारे संस्कार बनते जाएंगे, उसी से ही वृत्तियां बनती जाएंगी। कहते हैं जैसा जैसा संकल्प होगा वैसी सृष्टि होगी। अगर संकल्प शुद्ध है, स्मृति शुद्ध है, तो दृष्टि और वृत्ति अपने आप में शुद्ध होगी। अगर संकल्प शुद्ध नहीं है, दृष्टि और वृत्ति शुद्ध नहीं है, स्मृति शुद्ध नहीं है, तो वृत्तियां कभी भी शुद्ध हो नहीं सकती। परंतु परमात्म शक्ति पिता ने हम बच्चों को वृत्ति से वृत्तांत बदलने के लिए कहा, वृत्ति से वायुमंडल बदलने के लिए कहा। अब वृत्तियों से वृत्तांत बदल जाए, वायुमंडल जाए, वायुमंडल बदल जाए, मानव की स्थिति बदल जाए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें योग साधना के द्वारा अपने मैले कुचैले जन्म जन्मांतर के सरे जले संस्कारों को, जो हमें बार बार निकृष्ट कर्म करने की ओर प्रेरित करते हैं, उनको योग अग्नि में भस्म करना होगा। क्योंकि कहते भी हैं योगाष्ट अग्नि दग्धो विकर्मा। योग एक ऐसी अग्नि है, एक ऐसी आग है, जिससे उस आग को कोई स्थूल आग नहीं कह सकते हैं हम, वो है परमात्म प्रेम की आग, परमात्म स्नेह की आग, परमात्म पिता के प्यार की आग। उस आग के द्वारा ही हमारे जो निकृष्ट और वायात व्यर्थ संकल्प है वो चेंज होते जाएंगे, और शुद्ध संकल्पों में हम रमन करते जाएंगे। और जैसे जैसे शुद्ध संकल्पों का प्रवाह हमारे अंदर प्रवाहित होता रहेगा, तो हमारी वृत्तियां अपने आप में शुद्ध हो जाएगी, और हमें जो परमात्मा पिता ने काम दिया कि वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है, वृत्ति वायुमंडल भी बनाती है, वाइब्रेशन भी पैदा करती है। बाबा तू इतने तक हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम्हारे शुद्ध संकल्पों का प्रवाह इतना श्रेष्ठ होना चाहिए, इतना शुद्ध होना चाहिए, जो दूर 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 तक लोगों के पास वो प्रवाह पहुंचे। जैसे आप सब जानते हैं हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है, हमारे भारत देश की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, और हमारे भारत देश के ऋषि मुनि एकांत में बैठकर, जंगल में बैठकर योग साधनाएं करते, अपने मन को स्थिर रखने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते, जिससे उनके इर्द गिर्द का वातावरण कितना शांत शीतल हो जाता, जो बड़े बड़े जंगली जानवर भी आकर वो भी उनके आगे आकर नतमस्तक हो जाते। वो किसका प्रभाव था, जो नतमस्तक होते वो उन्हीं ऋषि मुनियों की तपस्या का प्रभाव था। तो आज प्राण बाप दादा हम बच्चों को भी यही शिक्षा नित्य देते हैं कि बच्चे अपने संकल्पों को, अपने मन वचन कर्म को, अपने संस्कारों को शुद्ध बनाओ, जिससे तुम्हारी वृत्तियां ऑटोमेटिकली शुद्ध होती जाए और वो शुद्धता का प्रवाह ऐसे प्रवाहित हो जैसे आप देखेंगे समुन्दर के अंदर एक पत्थर डाल दो तो क्या होगा, वो एक गोलाकार बनकर उससे तरंगे उठेगी, गोलाकार बनते बनते जहां आपने पत्थर डाला वही वो पहुंच जाएगी। अगर गहराई से सोचा जाए तो हम सबका जीवन भी समुन्दर के न्यायी है। जैसा हम संकल्प करेंगे, संकल्प की रफ्तार रॉकेट से ज्यादा तेज है। हमने जो संकल्प किया समझो वो हमारे तक सीमित नहीं रहेगा, वो संकल्प फैलते 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 सब समस्त विश्व की आत्माओं तक पहुंच सकता है। तो अगर आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे? कहते हैं हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो जब हम सबसे पहले जो प्राण बाप दादा हमें शिक्षाएं देते हैं उनको पहले अपने जीवन में अप्लाई करें, सदा सकारात्मक चिंतन करें, स्वचिंतन करें, समर्थ चिंतन करें और शुद्ध संकल्पों में रमन करते रहें, तो क्या होगा, रमन करते 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 हमारे अंदर, हमारी कॉन्शियस के अंदर ये समृद्धियां जागृत हो जाएगी कि मैं एक शुद्ध सशक्त समृद्ध संपन्न संपूर्ण आत्मा हूं और मुझे कल्याण 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 करना है। मुझे अपना बचपन याद आता है, जहां हम रहते थे वहां एक संत आया करते थे तो वो पंजाबी में बोलते थे, हरि ओम की आवाज पई आवे संतन दी झुकी दे बिचो, राधे श्याम की आवाज पई आवे संतन दी झुकी दे बिचो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये झोंपड़ी है, ये मंदिर है और मैं चैतन्य मूर्ति बनने वाली हूं, क्योंकि उस कल्याणकारी पिता ने हम सबको किस लिए अपना बनाया, हम सबको रोजाना क्यों सींचते हैं, हम सबको एक सशक्त दिव्य मूर्ति बनाने के लिए, जिस मूर्त के अंदर सत्यता भी हो, स्वच्छता भी हो, पवित्रता भी हो, रूहानियत भी हो, दिव्यता भी हो। क्योंकि जहां पवित्रता रूहानियत और दिव्यता है, सत्यता है, वहां दिव्य गुण दिव्य शक्तियां दिव्य धारणाओं का अपने आप में प्रसारण होगा। आपको अपने मुख से नहीं बोलना पड़ेगा कि मेरे पास आओ, गुलाब का फूल कभी ये नहीं बोलता कि आप मेरे पास आओ। जहां गुलाब है वहां आकर्षण है, वहां सुगंध है। इसी प्रकार अगर हमारा जीवन जो हमारी पहचान है सद्गुणों से भरपूर है, सर्वशक्तियों से संपन्न है, मन वचन कर्म की पवित्रता है और शुद्ध संकल्पों में सदा रमन करने वाला है, तो जहां शुभ है शुद्ध है वहां शुभ है, वहां कल्याण अपने आप में समाया हुआ है। आप देखेंगे अगरबत्ती है, अगरबत्ती के अंदर कई प्रकार के मिक्स किए हुए होते हैं, उसमें खुशबू सुगंध होती है, परंतु अगरबत्ती को अगर एक स्टिक के रूप में रखा जाए तो क्या वो खुशबू फैलाएगी? फैलाएगी। अगरबत्ती को जब अग्नि के संपर्क में ला दिया जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर जो खुशबू है वो वातावरण को शुद्ध करेगी, ऐसे है ना। इसी प्रकार मेरे में गुण है, शक्तियां हैं, धारणाएं हैं, परंतु अगर मेरा योग उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ निरंतर लगा हुआ है तो खुशबू सुगंध आए बिना रह नहीं सकती है। तो हमें हमेशा अपने आप को ये संकल्प रखना चाहिए कि मुझे अपनी ही वृत्तियों से, अपने ही श्रेष्ठ संस्कारों से, अपने ही श्रेष्ठ संकल्पों से अपने परिवार को बदलना है। कई माताएं बहनें भाई आके बोलते हैं कि हमारे परिवार के लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, और मैं उनको हंसी हंसी में कहती हूँ कि तुम भगवान की बात नहीं सुनते हो तो वो तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे। तुम अगर भगवान की बात सुन लो तो वो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे, ये हो नहीं सकता। उस सर्वशक्तिवान पिता ने हम बच्चों को इतना खजाने दिया। कल भी आपने वाणी के अंदर सुना कि बच्चे तुम्हारे पास अखुट खजाने हैं, अब उस अखुट खजानों को संभाल के रखो और निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि जब तक तुम कारण ही कारण बताते रहोगे तो निवारण कभी हो नहीं सकता है। जब स्वयं ही तुम निवारण स्वरूप बन जाओगे और खजानों से अपने आप को संपन्न करते रहोगे तो जो सौकार होगा, जो बड़ी असामी होगी, उसके पर्सनैलिटी से, उसके हाव भाव से, उसके चिंतन से छिप नहीं सकता। सूरज आप देखेंगे, सूरज जब उदय होता है तो रोशनी आती ही आती है। सूरज में वो शक्तियां हैं जो दूर पृथ्वी के अंदर पैदा होने वाले अनेक प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करके एक नई ऊर्जा, नई शक्ति प्रदान करता है। तो आज हम कौन है, जरा याद दिलाइए अपने आप को, हम कौन है। हम उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं, और परमात्मा पिता ने हमको एक टाइटल दिया है कि ये बच्चे तू उगते सूरज हो, तुम उगते सूरज हो। उगते सूरज को सब कोई सलाम करता है, परंतु उगता सूरज सर्व प्रकार से संपन्न होना चाहिए। अगर उसमें कुछ कालिमा है, उसमें कुछ दाग है, तो उसको कोई, आप देखेंगे जब सूर्य अस्त होता है तो उसको कोई सलाम नहीं करता, परंतु जब सूर्य सवेरे सवेरे उदय होता है और पूरा अपनी उस तलाओं के अंदर युक्त होता है तो सब कोई उसको नमस्कार करते हैं। तो हमारा जीवन संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि हम एक तो महान हस्ती जो सदा कल्याणकारी है, जो सर्वशक्तिमान है, उनके बच्चे हैं, और दूसरा जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है उसके हम बच्चे हैं, और उनके भी मुख्य वंशावली है। मुख की संतान सबसे उत्तम संतान होती है, परंतु उत्तम 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 कहने से उत्तम नहीं बनेंगे, उत्तम धारणाओं से अपने आप को जब सुसज्जित करेंगे, हमारा रहन सहन, खान पान, चाल चलन, अमृत वेले उठना, ज्ञान योग की पढ़ाई में अपना ध्यान लगाना, जब सब बातों में उत्तम होगा और नियम और मर्यादा के अनुकूल होगा तो क्या होगा। हम लक्ष्मण रेखा के अंदर है तो माया रावण आ नहीं सकता है, परंतु अगर हम उस रेखा का उल्लंघन कर देते हैं तो क्या होगा। जैसे सीता को रावण ले गया, ऐसे माया हमसे कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करा देगी, फिर हम पश्चाताप करते आ रहे हैं ये क्या हो गया। परंतु अगर हमारी जो अपनी निजी संपदा है, क्योंकि जब हम भगवान के घर में आए तो हमने सब कहा कि प्रभु, भक्ति में गाते थे, अब तूने हमारा हाथ पकड़ लिया, हम तेरे हो गए। कहते हैं ना हम तेरे हैं, कि नहीं कहते हैं तेरे हैं। जब तेरे हो गए, उसने हमारी उंगली पकड़ ली, हमारी उंगली उस भगवान के हाथों में है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, तो फिर हम इस शरीर के लिए कैसे हो गए? हमारा ये अपना नहीं है, न तन अपना है, न मन अपना है, न धन अपना है, हम उसके ट्रस्टी है। तो जब निमित्त निर्माण होकर के निर्मल स्वभाव धारण करके हम चलेंगे तो चेंज अवश्य आएगा। और सदा अपने आप को ये सोचना चाहिए कि मुझे गुण मुहूर्त बनना है, ज्ञान की खुशबू, तपस्या की खुशबू, परमात्मा पिता के प्यार की खुशबू मेरे अंदर जरूर रहनी चाहिए, जैसे गुलाब का फूल। एक दो दोस्त कहीं आपस में जा रहे थे, तो वो चलते चलते ऐसे स्थान पर पहुंच गए जो थोड़ा ठीक नहीं था, परंतु एक दोस्त कहने लगा, देखो वो फलाने जगह पर गुलाब की टोकरी पड़ी है, तुम उसको टोकरी को उठा करके ले आओ। और फिर उनसे कहने लगा कि देखो इसके अंदर गुलाब है, अब इस गुलाब को अगर आटे के डब्बे में डाल दोगे तो क्या करेगा, खुशबू छोड़ देगा या आटे की खुशबू ले लेगा? तो वो कहने लगा कि गुलाब तो गुलाब ही है, वो आटे के डब्बे में रहते हुए भी अपनी खुशबू देगा। फिर वो उसको क्रॉस क्वेश्चन करता है कि इस गुलाब को अगर गुलाब की टोकरी को नाले में डाल दे तो क्या करेगा? फिर वो कहता है कि वो अपनी खुशबू देगा ही देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बाबा सदा गुलाब बनना सिखा रहा है। अब कैसे सी उसको, हमें ये सोचना चाहिए मुझे कांटों में रहते हुए न्यारा भी बनना है, प्यारा भी बनना है, खुशबूदार भी बनना है। मुझे किसी की वजह से अपनी खुशबू को खराब नहीं करना। आमतौर पर क्या होता है कि दूसरों की तरफ से जब हमला होता है तो हम भी कुछ ना कुछ उस आवेश में आके, जोश में आकर उल्टा सीधा कुछ बोल देते हैं, है ना? अपनी वृत्तियों को भी खराब कर देते हैं, अपने संकल्पों और कर्मों में भी चेंज ले आते हैं। परंतु अगर हमारी स्मृति के अंदर सदा यही रहे कि मुझे एक चैतन्य दिव्य गुणों की मूर्त बनना है जिसका यादगार भक्ति मार्ग में देवियों के रूप में है, मेरे नयन, मेरा बोल, मेरा व्यवहार, मेरा कर्म, मेरी धारणाएं, मेरे वाइब्रेशन सशक्त, शीतल, शांत और बहुत दिव्य आकर्षण को लिए हुए हो, जैसे हमने मम्मा बाबा को देखा। मम्मा बाबा को देखते ही उनमें बहुत दिव्य अनुभव होते थे, उनका ललाट इतना चमकता था, उनके नैनों में एक बहुत तेज होता था, वाणी में बड़ी मधुरता और उमंगोत्साह बढ़ाने वाली शक्ति होती थी। मैं तो कभी कभी सोचती थी कि बाबा तो बाबा की वाणी में, बाबा की दृष्टि में, बाबा के वाइब्रेशन में एक सपेरे जैसी शक्ति है। जैसे सपेरा होता है ना, सपेरा वो क्या करता है, बीना बजा बजा के क्या करता है, सांप जिसे हम बहुत डरते हैं उसको नचाने लग जाता है, वो उसके सामने नाचने लग जाता है, नाचता है। तो ठीक बाबा भी ज्ञान योग की बीना बजा बजा के हम सब में उमंग उत्साह, हम सब की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करते 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 ऐसा जागृत कर देता जो पीछे मुड़ के नहीं देखते, संसार क्या है उसको देखते नहीं। आप यज्ञ इतिहास की झलकियों को उठा करके, उनकी किताबों को उठा करके देखो, आदि काल में क्या क्या, किसके क्या क्या नहीं त्याग किया होगा, कैसे सब त्याग करके फिर उसको पीछे कभी याद भी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि बाबा ने ऐसी ज्ञान से, योग से, धारणा से, उमंग उत्साह से, ऐसा रूहानी नशा चढ़ाकर इतना उत्साहित कर दिया اتنا کابل بنا دیا جو پیچھے مڑنے کا کسی کو سنکلپ نہیں آیا. پرنتو آج میں دیکھتی ہوں کہ بہت بھائی بندھو بار بار پیچھے کی طرف مڑتے ہیں, پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں, پیچھے کی طرف سوچتے ہیں. تو جتنا پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں, جہاں چھوڑ کے آئے پھر پیچھے کی طرف دیکھتے, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں گے تو کیا ہوگا بتائیے, کیا ہوگا؟ بھوت پریت ناگ بلائے سب چمٹ جائے گی, پرانی باتیں پھر پھر آنے لگ جائیں گی. جس کو آپ چھوڑ کے آئے پھر بھی آپ کی ورتیوں کو آ کے خراب کریں گی. تو اس لیے آج سے لے کر ایک سنکلپ کر لو, مجھے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا, مجھے آگے آگے قدم بڑھانا ہے. کہتے ہیں قدم قدم بڑھائے جا, خوشی کے گیت گائے جا. تو اب اپنے آپ سے روز بیٹھ کے انالائز کرو, ریئلائز کرو کہ میں وہاں ہی کھڑی ہوں یا میں کچھ قدم آگے بڑھی. کیونکہ جب تک قدم آگے نہیں بڑھیں گے تو منزل تک پہنچ نہیں سکیں گے. منزل کیا ہے؟ کرماتیت بننا ہے, سمپورن بننا ہے, سمپن بننا ہے, سمرد بننا ہے, سشکت بننا ہے, یہ ہماری منزل ہے. پر اس منزل تک کب پہنچیں گے؟ جب ہمارے قدم آگے بڑھیں گے اور ہمارے سنکلپ, جو بیج کا کام کرتا ہے سنکلپ, جتنا سنکلپ پاورفل ہوگا اتنا پھل اپنے آپ میں پاورفل نکلتا جائے گا اور آپ کے جیون میں اپنے آپ میں خوشیاں آتی جائے گی, نراشا اداسی سب دور ہٹتے جائیں گے. اس لیے نیگیٹو کو اپنے سے دور رکھو, ویرتھ چنتن کو دور رکھو. تبھی بابا روز ہم بچوں کہتا ہے بچے سو چنتن کرو, سمرتھ چنتن کرو, سکاراتمک چنتن کرو, کیونکہ سکاراتمک چنتن امرت تلیہ ہے. بابا نے کل امرت پلایا, امر بننے کی کہانی سنائی, تو امرت تلیہ ہے. امرت تلیہ بنا وہ جوڑنے کا کام کرتا ہے, ایک دوسرے کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. اور نکاراتمک چنتن دور بگانے کا, ویرودھ ویر ویرودھ ویمنسیہ کی بھاونائیں پیدا کرتا ہے, ہماری ورتیوں کو خراب کرتا ہے. مجھے یاد آتا ہے جگدیش بھائی, ہمارے ایک بہت بڑے اچھے براتا جی, جنہوں نے کم سے کم 108 کتابیں لکھی ہوں گی اپنے جیون کے انبھووں سے, اور بہت ان کا لرنر تھے, بہت ودوان تھے, جس کو بابا بہت گنیش جی کا نام دیتے تھے. انہوں نے 64 پرکار کے ورتیوں والا ایک چتر بنایا تھا, اور 64 پرکار کی جیسی جیسی مانسک ورتیاں انسان کی ہوتی تھی اس کے مطابق اس کا چہرہ بنایا ہوا ہوتا تھا. اور وہ جب چتر دیکھتے تھے تو اس میں ہنسی آتی تھی, اچھا ہم لوگوں کے ایسے ایسے ایسی ایسی ورتیاں ہوتی ہیں, ایسی ایسی ہماری شکلیں ہوتی ہوگی, ہے نا. ویسے بھی آپ دیکھیں گے ابھی جب کرود آتا ہے ہمارا, اگر اپنے اوپر کمانڈ نہیں ہوتا تو چہرہ تانبے کی طرح لال ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے نا, ہے نا. تو ایسے انہوں نے 64 پرکار کے شکلیں دکھائی تھی نا, اس کے اندر مانسک چتر ورتیوں کے اوپر بین بین پرکار کی شکلیں نا. تو جب اکانت میں بیٹھ کر کے اپنے آپ سے سوچو, انتر مکتا کی کٹیا میں بیٹھ کر کے سوچو کہ میرا مجھے جو لکش ہے ستو پردان بننا ہے, مجھے سشکت بننا ہے, سمرد بننا ہے, میری ورتیاں شدھ ہے, میرے سے نرملتا کا پرواہ آ رہا ہے, میں نیوارن کرنے والی آتما دکھائی پڑتی ہوں, میں مجھے لوگ میری بات کو کچھ ویلیو دے کے سنتے ہیں یا ایسے ہی کہتے ہیں. ایسے کس کی بات سنی جائے گی جس کی خود کی دھارنا اچھی نہیں ہو. کہتے ہیں گیان دان کرنے سے پہلے گن دان کرو. جب تک تو گیان دان کرتی رہے گی, گنوں کا دان نہیں کرے گی, تب تک پربھاؤ پریورتن نہیں آ سکتا. यूं तो परिवर्तन प्रगति का आधार है, संसार का एक नियम है परिवर्तन होना। प्रकृति भी आप देखेंगे बीच बीच में समय अनुसार परिवर्तित होती रहती है। तो अगर हमें इस संसार को बदलना है, इस परिवार और समाज को बदलना है, तो उसके पहले हमें खुद को बदलना होगा, अपने मन, अपने वचन, अपने कर्म को निर्मल बनाना होगा, ज्ञान योग से प्रकाशित करना होगा। जैसे हम देखते थे हमारी दादी जी है, दादी जानकी जी है, दादी गुलजार है, जो भी बड़े बड़े हमारे वरिष्ठ भाई बहन हैं, वो अपने जीवन की धाराओं से बदलते हैं। मैं कई बार बाबा की वाणी में जब सुनती हूँ, बाबा कहता है मुझे वारिस बच्चे चाहिए, वारिस बच्चे चाहिए, तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि शुरू शुरू में जब बाबा उस समय वारिस शब्द का नाम नहीं लेता था, परंतु त्याग, तप, वैराग जीवन की धारणाएं थी, क्योंकि त्याग से बल मिलता है, तेज आता है, तप से निखार पैदा होता है। त्याग और वैराग्य त्याग और तप का बीज है। तो जहां ये सारा त्याग, तप और वैराग और विरक्त भावनाएं जागृत रहती है, वहां समाज अपनी आवाज को समाज तक पहुंचाना या परिवर्तन लाना मुश्किल काम नहीं। पहले जो वारिस बच्चे निकले आज निकल रहे हैं, परंतु वो चमकते हुए सितारे जो होने चाहिए वो अभी थोड़े थोड़े कम दिखाई देते हैं। कारण थोड़ा सा त्याग कम हो गया। और कई भाई बहन तो ऐसे बोलते हैं त्याग क्या करना है, और कई अपने खान पान को भी आप देखेंगे, अच्छा आपको पता है बाबा खाने पान के लिए कितने स्ट्रिक्ट थे, कोई की दृष्टि न पड़ जाए। बाबा ऐसे वैसे के हाथ का भोजन बनाना स्वीकार नहीं करता था, किसी ऐरा गैरा की दृष्टि पड़ जाए तो बाबा भोजन नहीं स्वीकार करते थे। बाबा के यहां पर अन्न का बहुत बड़ा महत्व था, और श्रेष्ठ और महान वृत्तियों वाला जीवन वो ही जी सकता है जिसका मन, वचन, कर्म शुद्ध हो, अन्न शुद्ध हो, संग शुद्ध हो, वातावरण शुद्ध हो, दिव्य गुणों की धारणा हो। जहां ये सारी चीजें हैं वो ही श्रेष्ठ वृत्ति वाला बनकर श्रेष्ठ संसार के अंदर नई मोर, नई दिशा प्रदान कर सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे से कुछ दूसरों को रास्ता मिले, तो बाबा ने एक और युक्ति बताई, अंतर मन में चले जाओ, अंतर मन में बैठकर अपने आप से बातें करो, बातें करो, है ना। जिस पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूं। एक लकड़हारा था, रोज लकड़ियां काटता रहता था। अब वो लकड़ियां उतनी ही काट पाता था बेचारा जितना उसको शाम को अपने बच्चों के लिए कुछ धन लेकर आटा पानी दाल ले जा सके, बच्चों के भोजन का प्रबंध कर सके। एक साधु महात्मा थे, वो उसको देखते रहते थे कि बेचारा कितना गर्मी के अंदर उतनी लकड़ियां काट पाता है जितनी उसको जरूरत होती है। तो एक दिन वो उसके पास गए, कहते हैं लकड़हारे तू थोड़ा अंदर जा। तो वो संत की आज्ञा मान करके वो अंदर चले गए। अंदर जाते हैं तो चंदन के पेड़ होते हैं, अब वो चंदन के पेड़ों को काट लेता है और फिर बाजार जाकर के उसको बेचता है, उसे काफी धन मिल जाता है जिसका वो गुजरान करता है। फिर थोड़े दिन के बाद फिर वो संत के पास जाता है, तो संत फिर कहते हैं तू और भीतर चला जा। तो वो और भीतर जाता है तो उसको चांदी की खान मिलती है, वहां से वो चांदी लेता है, चांदी को बेचता है, अच्छी तरह से जीवन अपना भी और अपने बच्चों का भी गुजरान अच्छी तरह से करता है। फिर कुछ दिन के बाद फिर लालसा पैदा हो जाती है, फिर वो उसके साधु के पास जाता है तो कहता और भीतर चला जा, फिर उसको सोने की खान मिलती है, वहां से भी वो सोना लेता है और बहुत कुछ करता है। पर उसके मन में अब ये सारा कुछ उपलब्धियां होने के बाद उसके मन में एक संकल्प पैदा हो जाता है कि मेरे को तो ये संत कहता है तू अंदर जा, भीतर जा, भीतर जा, भीतर जा, खुद तो एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठा रहता है, ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं भीतर जाता। तो वो उसके मन में बहुत उलझन होती है, तो वो संत के पास फिर जाता है, कहता है महाराज आप मेरे को तो कहते हैं भीतर जा, भीतर जा, और खुद आप एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठे रहते हो। तो कहा भीतर जाना दो प्रकार से होता है, एक है भीतर जाना बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करना जो मैंने आपको बताया, एक है भीतर जाना आंतरिक खुशी, आंतरिक शक्ति, आंतरिक सुख, आंतरिक आनंद को प्राप्त करना, वो तो वृक्ष की छाया के नीचे ही बैठ करके हो सकता है, अर्थात त्याग और तपस्या से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता, है ना। तो मेरी आपको ये छोटी सी प्रसंग सुनाने का अभिप्राय क्या है, मेरे प्यारे भाई बहनों मेरा एक ही सुझाव है, थोड़ा भीतर जाके अपने से बातें करना सीख जाओ। जितना हम भीतर जाके अपने से बातें करना सीख जाएंगे उतना हमारा जीवन संपन्नता की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और हम सब मिलकर के क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, एक ऐसी लहर फैलाएंगे, है ना, जो ऐसी वृत्तियां फैलाएंगे, क्योंकि वृत्तियों से ही वृत्तांत बनता है, वृत्तियों से ही वायुमंडल बनता है, वाइब्रेशन से ही संसार बदलता है। तो अगर संसार को हम कहते हैं ना संसार की नैया को हम पार लगा देंगे, बोलते हैं ना हम लोग, तो संसार की नैया सिर्फ बोलने से पार नहीं उतरने वाली, इस विषय वितरणी नदी से पार होकर के हम स्वर्णिम संसार में अगर जाना चाहते हैं, सर्वोत्तम सीट लेना चाहते हैं, तो सिर्फ उच्चारण करने से नहीं होगा, आचरण से होगा। कहते हैं आचरण ही उपदेश है, जीवन ही संदेश है, धर्म ही धारणा है। तो अगर हमारा जीवन में आचरण है, दिव्य गुण है, पवित्रता है, शक्तियां हैं, दुआएं हैं, चारों पांचों प्रकार के बल है, सब प्रकार के खजाने हमारे पास है, तो फिर अपने आप में जो हमारे बाबा का संकल्प है कि घर घर को स्वर्ग बनाना तुम्हारी जिम्मेवारी है ना, जिम्मेवारियां निभाते हुए भी हम क्या करिए अपनी जीवन मुख स्थिति को बना सकते हैं। अगर हम इस कार्य में अपने आप को नहीं लगाते तो चलते चलते जैसे एक तालाब के अंदर पानी पड़ा ही रहे तो क्या होगा, गंदा हो जाएगा, अनेक प्रकार के जम्स के अंदर पैदा हो जाएंगे। इसी प्रकार चले हम अपनी चित्तवृत्तियों को शुद्ध करने, अगर हम कुछ इसको वृत्तियों को शुद्ध करने के कार्य में लगे नहीं रहेंगे तो चलते चलते क्या होगा, अनेक प्रकार के जाले पैदा हो जाएंगे, तीन बीमारियां और पैदा हो जाएगी। कौन कौन सी, एक तो वहम पैदा हो जाएगा, दूसरा शक पैदा हो जाएगा, तीसरा अनुमान पैदा हो जाएगा। और आप देखिए जिनका ज्ञान योग मनन चिंतन सेवा में ध्यान नहीं है उनका चलते चलते ये तीन दोष तो जरूर आ जाते हैं। वहम आ गया, सदा वहम में लगे रहे, और वहम भूत के मुताबिक है। जहां वहम पैदा हुआ समझो भूत आ गए। भूत क्या करता है, व्यक्ति को स्थिर होने नहीं देता, स्थिर प्रज्ञ बनने नहीं देता, सदा हलचल 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 में रहता है ना। उसकी वृत्तियां सदा हलचल में रहेंगी, है ना। तो दूसरा क्या आया, शक। शक बीमारी की तरह, जैसे बीमार हो व्यक्ति को हर वक्त लगा रहता है मैं बीमार हूं। जब तक उसका पूर्ण इलाज नहीं होता तब तक उसकी बुद्धि के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर बाबा ने कहा शुद्ध बनो, पवित्र बनो, सशक्त बनो, उसकी बुद्धि में सदा यही रहेगा मैं तो बीमार हूं, है ना। इसी तरह से अनुमान सबसे खराब है। आप देखिए अच्छे पुरुषार्थियों के अंदर चलते चलते अनुमान की आग लग जाती है, अनुमान का जहर फैल जाता है। जैसे जहर धीमे 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 मनुष्य को खत्म कर देता, ऐसे ही अच्छे पुरुषार्थी की सर्वोत्तम स्थिति को अनुमान, ये मेरी बात कर रहा है, फलाने की कर रहा है, इसने इसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया, इसने ऐसा किया तब ऐसा हो गया, ये अनुमान अंदर ही अंदर जहर घोल कर तीव्र पुरुषार्थ से साधारण पुरुषार्थी बना देता है। साधारण आत्मा ब्राह्मण कुलभूषण बनाने की बजाय साधारण व्यक्ति बना देता, और फिर बाबा के आगे रिक्वेस्ट करने लगते, बाबा तेरे बच्चे होकर के भी तू हमारी मदद नहीं करता, हमने तेरे को अब 20 साल से अपना बनाया फिर भी तू हमारा बनकर के नहीं रहता, है ना। परंतु बाबा कहता है तू अंदर अपना मुखरा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में अपना मुखरा देख के तो देख, तू करता क्या, तेरी चित्तवृत्तियां क्या क्या करती है, तू इस समय किस जाल के अंदर, मकड़ी के जाल के अंदर फंसा पड़ा है, और जब तक इस जाल से अपने आप को निकालेगा नहीं तो तू श्रेष्ठ और महान आत्मा, शुद्ध वृत्तियों वाला, श्रेष्ठ वातावरण बनाने वाला नहीं बन सकता। तो अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं, एक श्रेष्ठ जन्म बन जाएं, सर्व को अपने से सुख दे, शांति दे, पवित्रता दे, रूहानियत दे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, अपने जीवन को कौन सा बना ले, हाँ, एकदम ऐसा सुंदर सशक्त बना लो जहां से अपने आप शुद्धता का प्रवाह हो। जैसे आप देखिए, आपने कभी वहां गए हो मैसूर के अंदर, वहां पर एक बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा स्थान, बहुत सुंदर सुंदर लाइटें लगी हुई है, लाइटों के अंदर बहुत बड़े बड़े फुहारे लगे हुए हैं, और उनके अंदर चले जाओ, फुहारे उधर से लाइटें हैं, उधर से फुहारे हैं, उधर से शीतलता का प्रवाह है, बैठ जाओ तो मन करता है यहाँ बैठ ही जाओ, और बहुत अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है उस टाइम, है ना, बहुत सुख खाता है। पर कब आया, जहां शीतलता है, जहां प्रकाश है, वहां जहां एक पवित्र स्वच्छता है, पवित्र वातावरण है, निर्मलता है, तभी आया आनंद। ऐसे ही हम कौन है और किसके हैं, जरा जानकी दादी जी को सुन लिया करो, कौन हूं किसकी हूं, है ना। तो जब हम कौन हैं और किसके हैं ये स्मृति के अंदर रहेगा तो वृत्ति भी श्रेष्ठ रहेगी, वातावरण भी श्रेष्ठ रहेगा, वाइब्रेशन भी श्रेष्ठ रहेगा, ठीक है ना। तो अपने आप से रोज सवाल पूछा करो कि मैं कौन हूं, किस लिए हूं, और मैं इस संस्था में क्यों आई, मुझे भगवान ने क्यों सिलेक्ट किया। भगवान को हमें अपना बनाने का एक उद्देश्य है, लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है, क्योंकि उसको संसार को परिवर्तन करना है, उसको संसार को स्वर्णिम संसार बनाना है, उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। एक सुंदर श्रेष्ठ महान लक्ष्य को लेकर उसने हमारे को चुना है संसार के अंदर, चुना है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को सत्व प्रधान बना रहे हैं, अपनी वाणी को सशक्त, अपने वाइब्रेशन को शुद्ध, हमारे से वो तरंगे निकले जो संसार के दूर दूर तक जाएं कि जीवन को सार्थक बनाओ, असली जीवन जीना सीखो। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने हम बच्चों को दी है, पर वो जिम्मेवारी हम तभी कर सकते हैं जब खुद को जीवन मुक्त स्थिति में रखेंगे। जीवन के अनेक प्रकार की बुराइयों से अपने आप को मुक्त रखेंगे, जीवन के अनेक प्रकार के जालों से अपने आप को मुक्त रखेंगे, जीवन के अनेक प्रकार के व्यर्थ चिंतनों से अपने आप को मुक्त रखेंगे, अनेक प्रकार के कर्मबंधनों से अपने आप को मुक्त रखेंगे ना? तब हमारे अंदर वो शक्ति आएगी, तब हम लाइट हाउस माइट हाउस बनकर डिवाइन इनसाइट बनकर दुनिया में कार्य करेंगे। बाबा रोज कहता है तुम लाइट हाउस हो माइट हाउस हो, दूसरों को मार्ग प्रदर्शित करने वाले हो, कहता है ना। तो आज हम अपने आप से पूछे बैठकर अपने आप से बातें करें कि जो बाबा चाहता है उसके अनुकूल मेरा जीवन है। तो जब ऐसा होगा तभी हमारी स्थिति भी श्रेष्ठ बनेगी, हमारे कर्मों में भी श्रेष्ठता आएगी और हम अपने संकल्पों को साकार कर सकेंगे। क्योंकि हम सबकी भी शुभ इच्छा रहती है, मेरे संकल्पों में भी इतनी ताकत नहीं आई है, मेरी बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर नहीं हुई जो मेरा बाबा से पूरा योग लग जाए और बाबा मुझे टच करे, हाँ बच्ची तुमको ये करना है, ये इच्छा रहती, परंतु वो इच्छा पूर्ण क्यों नहीं होती? उसका कारण यही है कि हम बाबा के महावाक्यों का सत्कार नहीं करते हैं, अंगीकार नहीं करते हैं पूर्ण नीति से। अगर उनको पूर्ण नीति से अंगीकार कर ले, सत्कार दे दे, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जैसे इस पर भी एक छोटी सी और कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। कहते हैं गुरु नानक देव जी का नाम तो आप लोगों ने सुना है। गुरु नानक देव जी एक काफला लेकर के चले, जब वो एक स्थान पर पहुंचे गांव के अंदर, लोगों ने बहुत उनका सत्कार किया। तो जब वो विदा होने लगे तो गुरु नानक देव जी ने उनको वरदान क्या दिया, कहते हैं उज्जर जाओ। उनके साथ बाला और मर्दाना थे, उनके मन में बड़ी हलचल पैदा हो गई कि ये क्या बोल रहे हैं, उज्जर जाओ। फिर दूसरे गांव में गए तो लोगों ने उनका बहुत सत्कार नहीं किया और ये अनाप शनाप कुछ बोला, व्यवहार अच्छा नहीं किया, तो उनको कहते हैं डटे रहो। तो दोनों प्रकार की बातों को सीन को देखकर उनके मन में ये संकल्प हुआ बाला और मर्दाना के कि ये क्या बोल रहे हैं, जिन्होंने सत्कार किया उनको कहते हैं उजड़ जाओ, जिन्होंने सत्कार नहीं किया उनको कहते हैं डटे रहो, ये क्या है? तो फिर उन्होंने गुरु नानक देव जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो उन्होंने कहा ठीक ही बोला, कहा जो अच्छे संस्कारों वाले लोग हैं उनको कहा उजड़ जाओ, वरना वो जहां जाएंगे वो अच्छे संस्कार फैलाएंगे, है ना, अच्छी वृत्तियां से अच्छा वातावरण बनाएंगे, वो सबके शुभचिंतक होंगे, है ना, और जो खराब संस्कार, इसलिए मैंने कहा उजड़ जाओ ना, और जो खराब संस्कार वाले हैं उनको कहा डटे रहो, जहां बैठे हो तुम बैठे रहो, नहीं तो जहां जाओगे वहां अपनी वृत्तियों का प्रभाव डालोगे। मेरे कहने का भाव ये है कि हमको उजड़ने का मतलब ये नहीं है कि बाबा कहता है घर बार छोड़कर कि अब तुम जगह जगह जाओ, ऐसा नहीं कहता, परंतु बाबा ये कहता है कि खुद बनो और बनाओ, पहले अपनी सेवा करो फिर औरों की सेवा में व्यस्त रहो, क्योंकि जितना हम अपने आप को बनाने में औरों के कार्य में बिजी रहते हैं उतना हमारे संस्कार अपने आप श्रेष्ठ बनते जाते हैं। जितना खाली और बैठते हैं कुछ काम नहीं करते हैं उतना व्यर्थ चिंतन होता है, व्यर्थ की बातें अपने पास आती है, फिर निराशा और उदासी आती है, उसे और अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप सबको मैं यही शुभ भावना और शुभकामना दूंगी, अब अधोगति से निकलकर सर्वोत्तम सदगति को प्राप्त हो, उसके लिए मनन करो, चिंतन करो, स्वचिंतन करो, समर्थ चिंतन करो और बाबा के कार्य में सहयोगी बनो। कहते हैं योगी बनो, सहयोगी बनो, प्रयोगी बनो। योगी बनो अपने लिए, सहयोगी बनो दूसरों के लिए, प्रयोग करो समस्त विश्व के लिए। तीनों काम अपने से करने हैं, ऐसी मेरी आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति शांति शांति।